मुश्किल अल्फाज की वजाहत। लन तनालू, लन हरगिज नहीं के मानी देता है, फेल मजारे पे दाखिल होता है। लम और लन फेल मजारे के अंदर दो जमाने पाए जाते हैं, एक तो है हाल और दूसरा है मुस्तकबिल। और इसका तर्जमा यूं किया जाता है, जैसे खाता है खाएगा, सोता है सोएगा, रोता है रोएगा, लिखता है लिखेगा। तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दो जमाने पाए जाते हैं। और इसमें जब नफी के मानी पैदा करना मकसूद हो तो लम और लन दाखिल होता है, और नहीं में ताकीद के मानी पैदा कर देता है। लन तनालू, तुम हरगिज नहीं पा सकोगे। तनालू, नून या लाम, उसके मानी है पहुंचना, हासिल करना, और उस चीज तक पहुंचना जिस चीज तक पहुंचने की इंसान जो है वो ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें हैं जिन तक इंसान जो है वो पहुंचना चाहता है ना, तो इस चीज तक पहुंचना जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता हो, मंजिले मकसूद को भी कहा जाता है, मंजिले मकसूद तक पहुंचना। तो लन तनालू, हरगिज नहीं पहुंच सकोगे। अल बिर, बिर का लफ्ज जो है ये नेकी के लिए आता है, और अबरार इसकी जमा है। बिर जो है अल्लाह के साथ जो है बंदगी का, वो भी इससे मुराद है। बंदों के साथ जो नेकी की जाती है, किसी के साथ कोई वादा और हलफ कर लिया जाए, वो भी इससे मुराद है। तो हिबून, हा, बाबा और हब्बत उन दाने को कहते हैं। इसी से उधार के मानी लेकर हर पसंदीदा चीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी से महबूब है, मोहब्बत है, हुब्बा है। फिर आयत नंबर 93 है, इसमें है तुनज्जल, तो नून ज़ेलाम, नज़ला उतरना और अंजला उतारना। सादिकीन, सादिक वाहिद है, सादिकीन इसकी जमा है। सिद्क रूट है, सच्चाई के लिए इस्तेमाल होता है। सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का ये लकब था। इफ्तरा, फा रा या, इसके लफ्जी मानी है चमड़े को सीने के लिए काटना, ठीक करने के लिए काटना। लेकिन जो है वो ये लफ्ज जो है जैसे खराब करना, घड़ना, उसके मानी में इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे वैसे तो ये है कि चमड़े को इसलिए काटा जाता है ना ताकि उसको सिया जाए, ठीक किया जाए, लेकिन उसी ठीक करने में उसको खराब कर दिया जाए। तो फारा या, चमड़े को सीना और दुरुस्त करना। लेकिन ये बाबे इफ्तियाल में जब आता है ना, जैसे इफ्तरा, बाबे इफ्तियाल में आपको ता नजर आ रही है, आप लिखें तो इफ्तियाल, तो इसी तरह इफ्तरा, तो इससे इसके मानी काटने के, खराब करने के हो जाते हैं। आयत 95 में है मिल्लत, मिल्लत नीम लाम लाम, और ये कहते हैं दीन की बुनियादों को, दीन की जो उसूली बुनियादें हैं उनके लिए ये मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखें तो एक शरीयत का लफ्ज बोला जाता है और एक मिल्लत का। शरीयत जो थी वो मुख्तलिफ उम्मतों के पास मुख्तलिफ रही, वो हालात के मुताबिक बदलती रही, लेकिन दीन एक ही रहा, दीन में कोई तब्दीली नहीं हुई। जैसे इबादात का जो निजाम है ये दीन है, अकायद ये दीन है। फिर आप देखें कि रोजा रखना, तो रोजा हर उम्मत में अल्लाह ताला ने फर्ज किया, जैसे सूरत अल बकरा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। اے ایمان لانے والوں، تم پر بھی اللہ نے روزے فرض کر دیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو آیت کے اس حصے سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ صرف مسلمانوں پہ روزے فرض نہیں ہوئے، جو پہلی قومیں تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. تو روزے تو سب پر فرض رہے، تو روزے جو ہیں یہ تو دین ہے، لیکن اب سحری افطاری کے آداب کیا ہیں، ان کی مدت کتنی ہے، ان کی گنتی کتنی ہے کہ کتنے روزے، یہ سب میں فرق رہے. تو دین ایک رہا، شریعت بدلتی رہی. تو ملل جو ہے یا ملت جو ہے، یہ کہتے ہیں دین کی بنیادوں کو، دین کو، اصل کو. اور ویسے دین ہے، لیکن اگر دال پر زبر آ جائے گی تو معنی کیا ہے؟ دین کے پھر معنی دے گا. تو اعراب کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. المشرکین، المشرک واحد ہے، المشرکین اس کی جمع ہے. اور اس سے پہلے حنیفہ، ہا کے ہا ہے نا، اگر اس کے نیچے ایک نقطہ دے دیا جائے تو کیا بنے گا؟ جنف. اور معنی الٹ ہو جائیں گے. حنف ہے یکسو ہونا، سب سے کٹ کر ایک طرف ہونا، اور جنف کیا ہے؟ کسی طرف مائل ہونا. تو ایک نقطے کا فرق جو ہے وہ معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. بیت گھر کو کہتے ہیں. ودیا، وا دواد این، ودا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور ودیا یہ ماضی مجھول ہے، بنایا گیا. بھی بکا تھا بیس میں. یہاں پہ ویسے با کے معنی عام طور پہ ساتھ کے ہوتے ہیں ود کے، لیکن یہاں میں کے معنی میں ہے. بکا یہ مکہ کا پرانا نام ہے، یہی اس کا روٹ ہے، با کاف کاف. مبارکن، بارا کاف روٹ ہے برک، اور اس سے مبارک. ہدن یہی اس کا مادہ ہے. للعالمین، عالم واحد ہے اور عالمین اس کی جمع ہے. بیناتن، بیناتن واحد ہے، بینات جمع ہے. نشانی کو کہتے ہیں، آیات کو بھی کہتے ہیں. کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مقام کا روٹ کاف و میم ہے، قوم سے، اور مقام جگہ کے لیے آتا ہے. مراد ہے وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. استطاع تو این تو ان، اور یہ کہتے ہیں اطاعت کرنا، کہنا ماننا. متی، متا، اطاعت، اس کی فیملی کے مختلف الفاظ ہیں. متوا بھی ہوتا ہے جو خوشی سے پھر کام کرتا ہے. العالمین دوبارہ جمع آ گیا، اور اگر ہو عالمین دو ہوگا نا، میم کے الفاظ آ جائے گی نا. شابش. آیت نمبر 99 میں لفظ ہے تصدونا، سواد دال دال. اس کے یہ ہے اس کا روٹ سواد دال دال، اور اس کے لفظی معنی ہے روکنا، روکنا. روکنے کے لیے قرآن میں جو ہے وہ 15 الفاظ آئے ہیں. صدا کا چھٹا درجہ ہے، اس کے معنی ہے روکنا، ہٹانا، باز رکھنا، اعراض کرنا. کسی کو اس کے ارادے سے روکنا، یا کسی کو کسی کی پالیسی سے روکنا، اس طرح یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور روکنا بھی کیسے؟ نرم برتاؤ سے، آہستہ آہستہ کسی کو اس کے قصد اور ارادے سے روک دینا. عوجہ، عوجہ کا جو لفظ ہے یہی اس کا روٹ ہے، عین واو جیم، اور یہ کہتے ہیں ٹیڑھ کو. اور یہ ٹیڑھ مادی طور پر بھی ہے، حسی طور پر بھی. اجسام کے لیے آتی ہے، جیسے زمین میں ٹیڑھ ہو، اسی طرح کسی انسان کی چال میں ٹیڑھ ہو، کسی دیوار میں ٹیڑھ ہو، کسی درخت کے اندر. تو یہ ساری ایسی چیزیں جو مادی ہیں، جسم ہیں ان کا، نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے یہ معنوی ٹیڑھ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی سوچ میں ٹیڑھ ہے. تو اور جب معنوی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر الجھاؤ کے معنی دیتا ہے، الجھاؤ یا پھر پیچ و خم، یا پھر کسی چیز کو جو ہے اس کو جو ہے وہ بگاڑ دیا جائے. तो इस तरह ये लफ्ज़ जो है ये माने देता है। यहाँ पे आयत नंबर 101 में आम लफ्ज है या तसिम ऐन स्वाद मीम, इसके लफ्जी मानी है रोकना। ऐन स्वाद मीम लफ्जी मानी है रोकना, और इसी से ये लफ्ज जो है जैसे जो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं तो इस्मत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आसिम अपने आप को बचाने वाला, आसिमा बचाने वाली, तो ये लफ्ज भी मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे किसी चीज को हिफाजत से रोक लेना या तसिम, हिफाजत से रोक लेना, बचाव करना, ये मुख्तलिफ मानी जो है ये लफ्ज देता है रोकना। तो जैसे वा तसिम जैसे है ना, वह मैं या तसिम, और जो कोई जो है वो थाम ले अपने आप को, रोक ले किस पर, बिल्ला अल्लाह पर। तो अल्लाह पर रोकने का मतलब क्या है कि अपने आप को अल्लाह पर मजबूती से जमा लिया। तो वैसे अगर आप देखें तो रोकने के मानी में है, लेकिन क्या है कि बी आ गई ना, प्रेपोजिशन आ गई, तो मानी है कि अल्लाह से ताल्लुक जो है मजबूत कर लिया ना, अल्लाह से मजबूती से जो है वो जोड़ लिया, थाम लिया। फिर आगे दोबारा है वा तसिमु, तो वा तसिमु जो है इसका रूट क्या है, ऐन स्वाद मीम, और फिर इसके मानी वही है कि मजबूती से पकड़ लेना, मजबूती से जमाना, और वैसे इसके लफ्जी मानी होते हैं बचाने के, रोकने के। आयत नंबर 103 है, इसमें है अल्लाफा, हमजा लामफा, इसके मानी है जोड़ना, मिलाना, इसी से उल्फत है, मोहब्बत है, कि उसमें जो है वो इंसान, एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से जुड़ता है, जो भी अच्छा रवैया होता है प्यार का, मोहब्बत का। फिर इसी तरह ये लफ्ज जो है ये तालीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंसान, बाज लोग किताब लिखते हैं तो वो राइटर नहीं होते, मुअल्लिफ होते हैं। मुअल्लिफ का क्या मतलब है कि उसने मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ इक्तसाबात लेकर जो है ना किताब को कंपाइल किया, इकट्ठा किया। तो अल्लाफा युअल्लिफु तालीफ के मानी इकट्ठा करना, जमा करना के हैं। अलिफ, अलिफ से जुड़ना शुरू होता है और फिर आप देखें कि उसके ऊपर और बहुत से हरूफ जमा हो जाते हैं। इसी तरह गिनती 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर हजार तक जब पहुंचती है उसको अलिफ कहते हैं। और उसके मानी क्या है, उसके मानी हजार के हैं, और अल्लाह ताला ने जो है वो सूरत अल बकरा में भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि इंसान क्या चाहता है कि मरना नहीं चाहता, खा उसकी जिंदगी जो है वो हजार साल ही क्यों ना हो जाए। ये सूरत अल बकरा आयत 96, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फा सना, हजार साल। यहाँ पे फअसबहतुम अहम है, असबहा ये अफाल नाकिसा में से है, हो जाना, हालत की तब्दीली के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक शख्स पहले अमीर था फिर गरीब हो गया, पहले मोहब्बत कर रहे थे फिर वो आपस में नफरत करने लगे, पहले नफरत कर रहे थे फिर उसके बाद आपस में जो है वो दोस्ती करने लगे, मोहब्बत करने लगे। तो असल बात क्या है, हो जाना, जैसे हालत की तब्दीली हो जाना। स्वाद बहा, अब सुबह हो गई, अब सुबह में क्या होता है कि रात जो थी वो बदलकर सुबह हो गई, तो हालत तब्दीली, हालत की तब्दीली हो गई। अस्बहा, इसके मानी क्या होते हैं, हालत की तब्दीली। तो फास बात तुम में नेमत इख्वाना, तो पहले दुश्मन थे अब भाई भाई हो गए। शफा, शफा जो है इसका रूट है शीनफा या शीनफा हमजा, तो इसके मानी है किनारे के, किनारा। किनारे के लिए कुरान में कई लफ्ज जो है वो आए हैं, और उसमें आप इस सिलसिले में जो खास बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये ऐसे किनारे को कहते हैं जो अंदर से नीचे से खाली हो। शफा हर चीज के किनारे को कहते हैं जो अंदर से खाली हो, खोखला हो, और जिसके किनारे पे खड़े होकर इंसान जो है गिरकर हिलाक हो सकता हो, गिरकर हिलाक होने का खतरा हो। जैसे बाज़ुकात आप देखें कि जैसे समंदर है, कोई दरिया नहर है, तो उसके जो किनारा होता है समंदर की जो समंदर का पानी जो होता है ना, वो नीचे से मट्टी को काट काट कर बहा कर ले जाता है। ऊपर से सतह जमीन को देखें तो लगता है कि ये पूरी सही जमीन है, खद्दर जिसे कहें आप। पौ रखा पौ नीचे धनस गया, और बाजू का बिल्कुल नीचे चले जाते हैं क्योंकि जमीन नीचे से खोखली होती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शफा का। और हम वैसे उर्दू में भी कहते हैं कि अल्लाह ने उसको फिर शिफा दे दी, जैसे बीमारी की वजह से वो किनारे पर मौत के खड़ा था, फिर अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। तो आप इस तरह लिंक बना सकती हैं। फिर है हुफरतिन, हुफरतिन हाफारा इसका रूट है, और ये कहते हैं गड़े को, गड़ा। गड़े से मुराद ये है कि एक तो ये कि जैसे जो है वो जमीन को खोदा और गड़ा बन गया, और एक ये मुराद है कि गड़े का खोदना भी, यानी जमीन जब खोद ली तो जो जगह बन गई उसको भी गड़ा कहते हैं, और जमीन का खोदना उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, गड़ा। गड़ा, खड, खाई। अन्नार, नार का रूट क्या है? नून वोरा। फअन कज़ाकुम, नून काफ जाल इसका रूट है, इसके मानी है किसी शख्स को मुसीबत से छुड़ाना, बचाना। ताहतदून हादालिया वल्तकुन, वो और लाम अलबत्ता। तो तकुन असल में क्या है? काफ वो नून, फिर उसकी ये गर्दान चल रही है, तो उसी से काना था, और काना कभी कभी है के मानी भी देता है, हो है तो होनी चाहिए। उम्मत जमात को कहते हैं। यदूना बुलाती हो, दालाइन वो अल खैर नेकी के लिए आता है, या मरूना हमजा मुइम रा अमर हुक्म के लिए आता है, मारूफ उर्फ से है आइन राफा, यनहौना नून हा या मना करना। मुनकर जो है मुनकर बुराई के लिए आता है, नकारा ऐसी चीज जो कि जानी पहचानी ना हो, मुनकर नकीर भी कहते हैं ना, इनकार भी इसी से है नकारा। अल मुफ्लिहून फा लाम हा लफ्जी मानी है चीरना फाड़ना, किसान को कहते हैं वो चीर फाड़ कर गोडी करके खुदाई करके बड़ी मुश्किल से जमीन जो है उसको खेती और बाग के लिए तैयार करता है। आयत नंबर 106 है, तब यद्दू वा या द्वाद, ये सफेद के लिए आता है, सफेद रंग भी हो सकता है, और ये ऐसे रंग के लिए आता है जो कि सफेद हो या फिर चमकता हुआ हो, सफेद और चमकदार के लिए। और अंडे को भी कहते हैं ना, अंडे को क्या कहते हैं? बैदा या बैद। और अबियद, अबियद मुजक्कर है और बैदा मुअन्नस है, और इसकी जमा है बीद, बा या द्वाद, बीद। वजूहुन, वजहुन वाहिद है, वजूहुन इसकी जमा है, चेहरे के लिए आता है, जिस्म के आला और अफजल हिस्से को कहते हैं, और वो चेहरा होता है। वतस्वद्दू, तीन वोदाल रूट है, और काले के लिए, स्याह के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, स्याह काला। हजरे अस्वद, शाबाश। इस तरह से अब आपका ज़हन चलना चाहिए कि आप जो है उसकी फैमिली के अल्फाज जो है ना आपको आते हों, तो हजरे अस्वद को आप याद करें, उसी से इस वदत स्या हो गए। ता जो है ना ये मुअन्नस की अलामत है, तो वजूहुन चेहरे मुअन्नस है ना, इसलिए यहाँ पे ये जमीर जो है वो आई हुई है कि चेहरे जो है वो स्या होंगे। फदूकू जाल वौकाफ, जौक चखना। उर्दू में भी आप कहती हैं कि उसका जौक बड़ा आला है, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, जायका, जरा जायका से चखना इसका। तो मुख्तलिफ तरह से आप ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं। फिर अब ये अदद दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, सफेद के लिए आता है। आयत नंबर 109 है, तुरजाउल उमूर, राजिम ऐन लौटना, और अल उमूर कामों को कहते हैं। अमर वाहिद है और अल उमूर इसकी जमा है। कुन तुम इसका मादा है काफ व नून, इसी से काना, कुनू, कानत, कुन, और यहाँ पे कुन तुम हो तुम। खैरा ये सम तफ़सील है, बिलमूम सम तफ़सील जो है वो किस वजन पर आती है, अकबरू, अफालू के वजन पर अकबरू, और इसी तरह उसका मुअन्नस जो है जैसे कुबरा, सुगरा, हुस्ना, तो फौला के वजन पर मुअन्नस में आती है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस आम कायदे से हटकर हैं, जैसे खैर, उम्मतिन, हमजा मीम मीम उम, माँ को भी कहते हैं, उमुल कुरा, बस्तियों की माँ, बस्तियों का मरकज, और उम्मतिन ग्रोह जमात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उखरिजत माजी मजहूल है, खराजीन इसका मादा है, खराजा निकलना, और उखरिजत निकाली गई, क्योंकि उम्मत मुअन्नस है तो इसलिए उखरिजत का सीगा वर्ब जो आया है वो ये मुअन्नस वर्ब आया है, उखरिजत निकाली गई, पैदा की गई। तामुरूना हमजा मीम रा अमर, हुक्म देना, बिल मारूफ ऐन राफा उर्फ, मारूफ जानी पहचानी चीज को कहते हैं। वतन हौना नून हा या नहीं, मना करना, अलमुनकर नून काफरा नकारा, मकरूह को भी कहते हैं और अनजानी चीज को भी कहते हैं जिसको जिसकी जान पहचान ना हो। अक्सरू ज्यादा उनमें, अफलू के वजन पर है ना ये सब तफसील। फासिकून अल्फासिकून फासिन काफ, हद बंदगी से निकलना, फिस्क फासिक, फुसूक, अजन हमजा जाल या, अजियत तकलीफ सताना, और ये तकलीफ जो है ये मादी भी हो सकती है और हिस्सी भी हो सकती है। एक होता है किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाना, तो ये नजर तो नहीं आता, महसूस किया जाता है ना, और एक होता है किसी को हाथ से, यहाँ पे जबान की तकलीफ के लिए है। अल अदबार दुबुर पीठ को कहते हैं और अल अदबार इसकी जमा है। दाल बारा पहले भी पढ़ चुके हैं, दुबुर। तदबीर भी इसी से है। तदबीर में क्या होता है कि आप किसी मामले की बैक को, पीठ को, यानी उसके नताइज पर गौर करते हैं, तदबीर करना, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाले, आप तदबीर करना चाहती हैं कि पानी आएगा तो फिर क्या, कैसे, हवा ज्यादा तेज है, कोई जो है वो झक्कड़ आ रहा है, तूफान है, तो आप तदबीर, गौर व फिक्र नताइज पर गौर करते हुए, तदबीर यानी उसका एंड। पीठ भी क्या बैक को कहते हैं ना, तो किसी मामले के एंड पर गौर करना। दूरी बद द्वाद रवा, इसके लफ्जी मानी होते हैं मारना, और इसी से उधार के मानी लेकर जैसे दूरी बद लाजिम कर दी गई, मार दी गई। एक है ना, किसी को आप हाथ से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, किसी पत्थर से मारते हैं, किसी चीज से मारते हैं, और एक ये है कि जैसे किसी पर मौत, गुर्बत, ऐसे है जैसे कि गुर्बत उसको मार दी गई है, लाजिम कर दी गई। तो दूरी बद लाजिम करना, मुसल्लत कर देना, किसी पर हावी कर देना, उसके माने में भी इस्तेमाल होता है। डाली गई ये भी सही है। الذلة ذال لام لام اور اس کے معنی ہوتے ہیں کمزور، ازلہ تم کمزور، زیر دست، کمزور ہونا، جھکا ہوا ہونا، اور حکارت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی تذلیل کرنا، دونوں طرح یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سوقفو سوقفو سا قاف فا کسی چیز کے پا لینے یا کسی کام کے کرنے کے ہیں. سقفا کے پھر معنی ہے کام کو مہارت سے کرنا، جیسے کام جب کوئی کسی سے کام لیا جا رہا ہے تو مہارت سے لینا. ثقیف دانا ہوشیار کو کہتے ہیں. اردو میں ثقافت لفظ آپ استعمال کرتی ہیں، ثقافت، دانائی، مہارت، معنی ہے کسی کو پانا، اس کی خوب خبر لینا، اس پر فتح پانا، یا اسے مہارت سے، دانائی سے کام لینا. حبلن حبلن جو ہے اس کے لفظی معنی ہے رسی کے، رسی ہا بالام، اور اسی سے یہ لفظ جو ہے یہ جیسے مدد کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ رسی سے ایک رسائی ہوتی ہے نا، جیسے رسی پر پاؤں رکھ کر آپ آگے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، تو اس طرح یہ مدد کے لیے، رسائی کے لیے، سیڑھی کے لیے، ایک سلسلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. وبا او با و حمزہ معنی ہے لوٹنا. وبا او بغضب من اللہ. المسکنۃ سین کاف نون سکنا رک جانا، تھم جانا. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے جو معیشت کے ذرائع وہ رک گئے ہیں، وہ ایک جگہ پہ غربت پر آ کے ٹھہر گیا ہے. اسوا عین سوادیہ معصیت گناہ کے لیے آتا ہے، اسیان. بعض لوگ اپنا لقب آسی رکھ لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے ایسا رکھنے کی، ویسے ہی محسوس کر کے اپنے گناہ جو ہے محاسبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یا تدون ادو دشمن کے لیے آتا ہے، کسی سے تعدی ہے. لیسو لیسا ہوتا ہے نا نہیں، تو اسی کا یہ صیغہ ہے لیسو. سوا ان سین مویا برابر. انا حمزہ نون یا، حمزہ نون یا اس کے معنی ہیں کب، کیسے. انا اللیل راتوں کو، اس کی جمع انا ہے، حمزہ نون یا کی جمع انا ہے. یس جدون سین جیم دال سجدہ سجدہ کرنا، آیت نمبر 114 میں ہے. ویسارعون سین را عین سرا تیزی جلدی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جلدی کرو، تیز کرو. اور سرا وہ کام کرنا جس میں دیر نہ کی جائے، جیسے آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، سستی نہ کرنا، کام کو وقت پر یا ذرا پہلے ہی کر لینا. اولاد آیت 116 میں ہے. ولد اسم جنس ہے، ہر طرح کی اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ویسے تو خاص طور پر بیٹے کو کہتے ہیں نا، لیکن تمام اولاد اس میں شامل ہوتی ہے. اور آیت 117 میں ہے ریحن، ریحن را و ہا اس کا روٹ ہے، ہوا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہوا کے لیے کبھی ریاح استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی ریح جمع بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لفظ جو ہے وہ واحد بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ریح کی جمع ریاح ہے، اور جب ریاح کا لفظ ہوتا ہے تو رحمت کی ہوائیں مراد ہیں، اور جب ریح واحد کا صیغہ ہے इससे मुराद अजाब वाली हवा होती है, बिल अमूम ये होता है, रीह, क्योंकि मारूफ मानी रीह के क्या है, हरकत करना। रूह भी इसी से है, रूह हरकत करती है ना, जिसम में जब तक रूह होती है इंसान बोलता चलता है, रूह चलेगी इंसान खत्म, रूह का भी यही रूट है। यौमुन रौहुन, खुशगवार दिन को भी कहते हैं, राहत के मानी भी ये देता है। फिरुन स्वाद रारा, फिर इसके मानी होते हैं, आप पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ चुकी हैं के स्वाद रारा, जैसे अड़ जाना, ये अड़ जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा ये लफ्ज जो है ये सर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने आपको कहा था कि फिर्रातुन सर्रातुन एक थैली सी को भी कहते हैं ना, कि उसके अंदर कोई चीज रखकर फिर उसको बांध दिया जाए, तो स्वाद रारा सर्दी, सरसर हवा, फर्रुन बांधना किसी गुनाह पर सख्ती से जम जाना उससे बाज ना आना, और सुर्रतुन स्वाद राता उस थैली को कहते हैं जिसमें नकदी बांध कर रख दी जाती है। अब सरसर या सिर्रुन, अब इसमें क्या है कि सर्दी है और बहुत ज्यादा सर्दी है, जैसे ठेर है, पाला जिसको पाला भी कहते हैं, ये उर्दू पंजाबी में दोनों में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, और इसके मानी क्या है कि सख्त सर्द होने की वजह से जैसे जम गए वहां पे, अड़ गए, तो सर्दी जो है जब किसी जगह पे बहुत ज्यादा पड़ती है तो आप देखें जब वो फिर क्या है कि चीजें खराब हो जाती है ना, पाला सर्दी। तो बहरहाल फीहा सिरुन, हवा है जोर की और उसमें पाला भी है, जैसे पाला अड़ा हुआ है, जमा हुआ है उसके अंदर सर्दी। आयत नंबर 118 में बिताना लफ्ज अहम है, वतन बा तोए नून वतन, और ये कहते हैं पेट को, हर चीज के अंदरूनी हिस्से को कहते हैं, बुतून इसकी जमा है, बातिन उर्दू में भी आप कहते हैं कि उसका जाहिर और बातिन, जाहिर खुली चीज को, बातिन छुपी चीज को, तो बातिन असल में कहते हैं अंदरूनी हिस्से में छुपी हुई चीज, कि अंदर कोई चीज जो है जो छुपी हुई है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कपड़े का जो बातनी अस्तर होता है ना, अंदर का हिस्सा जो पेट से मिला हुआ होता है, उसे बिताना भी कहते हैं। तो ऊपर की जानिब जो है उसको जहरुन कहते हैं जाहिर से, और अंदर की जानिब उसको बतनुन कहते हैं अंदरूनी हिस्सा, तो अस्तर वगैरह को बिताना भी कहते हैं। फिर इसी से जो है वो बिताना तो रजुल, किसी आदमी का जो बिताना है ना, उसके मानी है कि उसका राजदार, भेदी, अंदर जिसको उसकी अंदर की बातें पता है, तो बिताना तो रजुल किसी शख्स के वली, राजदार दोस्त को कहते हैं जिसका उसके तमाम मामलात में अंदर जो है वो दखल होता है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि आपके अंदर तक बेडरूम में आ जाते हैं, आप उसे अपनी अंदर की सब बातें करते हैं, बताना बहुत ही गहरे जिगरी दोस्त को अंदर की बातें जिन्हें पता है, पेट का जैसे अंदर ये बटन पेट को भी कहते हैं ना, तो अंदर का हिस्सा, जैसे आपका लिहाफ है तो लिहाफ के ऊपर जो लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, कि ऊपर का कवर जो है ना, अबरा या जो भी आप उसे कहें, लेकिन जो अंदर की तरफ है तो उसको बिताना कहते हैं, जो अंदर जो आपके साथ जिस्म को टच करता है उसको बिताना है ना, अस्तर भी कहते हैं बिताना भी कहते हैं, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और वैसे भी अल्फाज तो बहुत से हैं, तो अस्तर को असल में बिताना कहते हैं, ठीक है, अस्तर ही बिताना है। या लूनकुम हमजा लाम वो, इसके मानी है कमी करना, कोताही करना, कोई काम जैसे चाहिए वैसे ना करना। या लू नकुम, खबाला, खबालाम, खराबी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी खराबी जो अजा और जवारे के बिगाड़ पर दलालत करे, ऐसी खराबी जो अजा और जवारे के जारे हुन से जवारे है ना के बिगाड़ पर दलालत करे। अजा किसे कहते हैं? ये जो जिस्म के हमारे अजा हैं, और अजा ही के लिए ये जवारे का लफ्ज जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है। और खराबी के लिए कुरान में तीन लफ्ज हैं, एक खबालन है, एक मारतुन है, एक फसाद है। अब आप देखें कि अगर किसी को बहुत ज्यादा गम है और गम ने उसकी अकल को खराब कर दिया तो फिर खबाला कहा जाएगा कि अकल पर, जिस्म के अजाब पर वो असर अंदाज होगी ना। अकल वैसे बंदा इस्तेमाल करता है ना, मोहब्बत ने इसकी अकल को तबाह कर दिया तब भी आता है खबल अल हुबू अकलहू। तो खबाल ऐसी खराबी जो किसी को लाहक हो तो उसको बेचैन करे, उसमें जो है वो इस्तराब की कैफियत पैदा कर दे, मुस्तकिल रोग नहीं जैसे किसी को कोई लग जाए तो खबाला कलफ से इस्तेमाल किया जाता है। वद्दू, वो दाल दाल, वदुन इसके माने क्या है? चाहना, वदूद भी इसी से है। चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला। अनितुम, अनितुम इसका रूट है आयन नून का, आयन नून का, और इसके मानी है ऐसी तकलीफ जिसमें हलाकत का अंदेशा हो। अशद्दतु जरर, तकलीफ की शिद्दत, बहुत ज्यादा तकलीफ। अनितुम, मुशक्कत, जहमत, तकलीफ के मानी में भी आता है। ठोकरें जैसे किसी को लगे ना ऐसी तकलीफ, ठोकरें लगे तो गिरेगा ही ना। बदत, बादालवाओ, बिला इरादा जाहिर होना। अलबगबाउ, बहुत वाहिद है, बगबा इसकी जमा है। अफवाहिहिम, फावोहा, और कहते हैं ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुंह के लिए। तो अफवाह कहते हैं बहुत से मुंह से निकली हुई बात को ना, जो आगे 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 मुंतकिल होती जाती है, उसको जो है वो अफवाह के नाम से याद किया जाता है। तो बहुत से मुंह से निकली हुई चीज के लिए अफवाह। अभी तक आपने एक बतन पढ़ा है, ये पेट और हर चीज का अंदरूनी हिस्सा, और दूसरा लफ्ज जो है वो आपने, जैसे जिस्म के अज़ा को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो फमुन जो है वो अफवाह मुंह के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। तो दूसरा लफ्ज आपने ये पढ़ा है फमुन अफवाह, और इसका रूट आपने याद रखना है फा वो हा। इसका तस्निया फमान भी है और जमा है अफमाम, और इसकी जमा अफवाह भी आती है। अफवाह का लफ्ज जब बतौर वाहिद इस्तेमाल हो तो इसके मानी होते हैं कि लोगों के मुंह पर चढ़ी हुई बेअसल बात, झूठी खबर जो मशहूर हो जाए, अफवाह। सुदूर सदरुन की जमा है और सदरुन सीने को कहते हैं, जिस्म का ये बलाई हिस्सा है ना नुमाया। इसी तरह आप कहती हैं किसी मुल्क का सदर मकाम, इसी तरह जैसे इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का सदर मकाम है, और यहाँ का सदर मकाम क्या है? ओटावा। अकबर इसम तफजील है, बैना बयानून वाजे करना बयान करना, बैनात बैनतुन बयान, अल आयात आयत वाहिद है, अल आयात इसकी जमा है, हा अंतुम, हा जो है ये हरफे तंबी है, जैसे जा और जही उलाई ये इस तरह इनके शुरू में आता है, इस इशारा के आगाज में आता है, उनका हिस्सा समझा जाता है। अब यहां में भी देखें हा अलग है अंतुम अलग है लेकिन इकट्ठा हो गया ना, तो यहाँ पे हा जो है ये सवाल के लिए आया है, ताकीद के लिए, ये तंबीह का कलमा है। जब किसी चीज पर जोर देना होता था ना तो अहले अरब का ये तरीका था कि वो उस वक्त जो थे वो हा का इस्तेमाल करते थे, हा अंतुम हा तुम ही वो हो, ठीक है। आयत नंबर 119 में लकूकुम लाम काफ या लाम काफ वो मिलना मुलाकात इल्का लकिया सब इससे है। अद्दू आयन द्वाद द्वाद इसके मानी है काटना। अब काटने के लिए भी कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज आए हैं, 10 लफ्ज हैं, और ऐन द्वाद द्वाद के मानी है दांतों से काटना, किसी जानदार को दांतों से काटना, उंगलियां काटी जा रही हैं या वैसे कुछ भी, क्योंकि काटने के लिए कता भी है, जैसे हरूफ मुकत्तात, जैसे इन्ना शानिया का हुवल अबतर बतरा वो भी जड़ कटा, तो बतरा के मानी है किसी जानवर की दुम काटना, बतर। सूरत अल कौसर में पढ़ा ना आपने ये लफ्ज, और भी बहुत से इसके लिए जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो याद रखे इसके मानी है दांतों से काटना। अनामिल, अनामिल जो है ये उंगलियों के बलाई हिस्से को कहते हैं, जैसे अगर आप गौर करें हमारी जो उंगलियां हैं तो ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है ना उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उंगलियों के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, एक है असाबिया और दूसरा है अनामिल। अनामिल जो है नून मीम लाम इसका मादा है, अनमलतुन की जमा है, अनमलतुन वाहिद है, अनामिल जमा है, उंगली का बलाई हिस्सा ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर का है जो इसकी पोरे हैं और या फिर इसकी अतराफ। आप इससे याद रखें कि उंगली को जब काटा जाता है अपनी उंगलियां इंसान हसरत से या अफसोस से मुहासबा करते हुए अपने मुंह में ले और काटेगा तो कौन सा हिस्सा लेगा? ऊपर वाला लेगा ना, पोर ही लेगा, तो उससे आप याद रखें। और अगर असाबे या असबाउन ये कहें तो इसका मानी क्या है? उंगली का नाखून वाला पोर, खम और जोड़ का मजमुआ। और बात कहते हैं कि सिर्फ पोरों के लिए बनान का लफ्ज आया है, तो यहाँ पे उंगली का बलाई हिस्सा इसकी अतराफ, जैसे यूं मुंह में रखा और काट रहे हैं, यूं रखा तो काट रहे हैं, अफसोस और हसरत के साथ। गैज गुस्से के लिए आता है, गैज गुस्सा, और ये लफ्ज जो है ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि गैज़ो गजब हम कसरत से इस लफ्ज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यही इसका मादा है। غین یا اور دوال، غین یا زوئے. غصہ، تغیز، قرآن میں تغیز کا لفظ آیا ہے کہ جہنم غصے سے جو ہے وہ بھپری بھی ہوگی. تم سس کم میم سین سین مس چھونا، تسو ہوں سین و حمزہ سو برائی کو کہتے ہیں. تصب کم سواد و با تیر کا نشانے پر لگنا، مصیبت بھی اسی سے ہے. سیبتن سیب تو صوب ہے یہاں پہ. حسنتن پہلے آپ نے پڑھا یہ نیکی ہے، یہاں پہ سیتن یہ اس کا اپوزٹ ہے، برائی کے لیے آتا ہے. اس کا روٹ بھی سین و حمزہ ہے. یفرہو فا را ہا، اس کے معنی ہے اترانا، خوش ہونا، اترانا، خوش ہونا. کیونکہ خوش ہونے کے لیے جیسے ویسے تو جیسے مسرت بھی ہے نا، سرور، بشارت، یہ لفظ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں فا را ہا یہ اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی تو اللہ کی نعمتیں ملنے پر انسان جو ہے جب دل سے شکر گزار ہوتا ہے تو تب فرحا، فرح القلب، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری انسان اختیار کرتا ہے تب بھی ہوتا ہے. کبھی یہ جو ہے یہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مذموم صفت ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اترانا، پھولانا، سمانا، دونوں طرح اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو فرحہ، خوشیاں منانا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان پر اترانا. آخری لفظ ہے آیت نمبر 120 سورۃ آل عمران، محیط، ہا و تا گھیرا کرنا، محیط ہونا. اور کبھی کسی کا گھیراؤ کیا جاتا ہے باتوں میں کہ اس کا نعت کا بند کر دیا، اور کبھی ہوتا ہے کہ ویسے جیسے پولیس جو ہے وہ چور اور ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لے، یا ویسے کسی کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لینا، دونوں طرح مادی اور حصی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے.